नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र की भाजपा सरकार का देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान। छत्तीसगढ़ में 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6.3% पर बरकरार रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में प्रधानमंत्री ऋण योजनाओं के तहत ऋण वितरित किए। बिहार के कैमूर जिले के कई हिस्सों में लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति। और हांगझोउ एशियाई खेलों में भारत ने कैनो स्प्रिंट और मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। महिला मुक्केबाजी में लवलीना फाइनल में पहुंची। कुल पदकों की संख्या 62 हुई। दोपहर समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर खर्चा बढ़ाकर 10,00,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
विकसित भारत के लिए फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी भविष्य की जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए। यही वजह है हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर इस साल 10,00,000 करोड़ रुपए कर दिया है। ये पहले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है।
श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब देश का हरेक राज्य, हरेक जिला और हरेक गांव विकसित होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में इस्पात उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के अनेक कदम उठाए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि बस्तर में नगरनार में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के इस्पात संयंत्र से वाहन क्षेत्र तथा रक्षा क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी।
बस्तर में जो स्टील बनेगा उससे हमारी सेना भी सशक्त होगी और रक्षा निर्यात में भी भारत का डंका बजेगा। स्टील प्लांट के कारण बस्तर सहित आसपास के इलाकों के करीब करीब 50,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। केंद्र सरकार बस्तर जैसे हमारे आकांक्षी जिलों के विकास को जिस प्रकार प्राथमिकता दे रही है, उस मिशन को भी ये स्टील प्लांट नई गति देगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के आदिवासी बस्तर संभाग के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में 27,000 करोड़ रुपए मूल्य की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने बस्तर में नगरनार में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए इस्पात संयंत्र को भी राष्ट्र को समर्पित किया। लगभग 24,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस समेकित इस्पात संयंत्र में उच्च कोटि के इस्पात का उत्पादन होगा। संयंत्र और उसके सहायक उद्योगों से हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अपने जगदलपुर दौरे पर प्रधानमंत्री ने जगदलपुर रेलवे स्टेशन के सुधार कार्य का भी शिलान्यास किया। उन्होंने अंतागढ़ और तारोकी के बीच नई रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने जगदलपुर और दंतेवाड़ा के बीच दोहरी रेल लाइन परियोजना का भी लोकार्पण किया। श्री मोदी ने तारोकी और रायपुर के बीच ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार गरीबों की चिंता करती है और गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, फिर वो गरीब चाहे किसी भी वर्ग या जाति का हो। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना में मनोहराबाद और सिद्दीपेट के बीच नई रेलवे लाइन का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी धर्माबाद और मनोहराबाद के बीच रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का भी लोकार्पण करेंगे। वो तेलंगाना के निजामाबाद से आंध्र प्रदेश के महबूबनगर और कर्नूल की रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री निजामाबाद में 8,000 करोड़ रुपए मूल्य की विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी 20 जिला मुख्यालयों में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का भी शिलान्यास करेंगे। 516 करोड़ रुपए की इस परियोजना में 50 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष तैयार किए जाएंगे। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 2023-24 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6.3% बनाए रखने का निर्णय लिया है। भारत में अनेक बाहरी चुनौतियों के बावजूद मजबूत आर्थिक वृद्धि जारी रहने को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। विश्व बैंक ने अप्रैल की अपनी रिपोर्ट में 2023-24 में भारत की वृद्धि दर का अनुमान पहले के 6.6% से घटाकर 6.3% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कोयम्बटूर में लाभार्थियों को 3,500 करोड़ रूपये की सहायता राशि वितरित की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिलों को हर प्रकार की सरकारी सहायता देने में प्राथमिकता दी जा रही है। इस कार्यक्रम में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण बांटे गये। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण किसानों और उद्यमियों को सब्सिडी तथा छोटे उद्यमी और व्यापारियों को ऋण सहायता दे रही है और इस बारे में जागरूक भी कर रही है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि 23,800 लाभार्थियों को खुदरा ऋण और 2,904 नए लाभार्थियों को मुद्रा ऋण दिए गए। उन्होंने बताया कि 18 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को स्टैंड अप इंडिया ऋण दिए गए। उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड धारक लोग भी सरकार से ऋण का आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कोयम्बटूर में 2,500 स्वयं सहायता समूहों को भी सहायता प्रदान की गई। 1,00,000 खाताधारकों को विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण दिया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनहितैषी योजनाओं के कारण उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। श्री ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार की केंद्रीय योजनाएं हमेशा देश के गरीबों, खासकर महिलाओं के हित में हैं। निर्वाचन आयोग का पूरा दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आकलन और समीक्षा करने के लिए आज हैदराबाद पहुंचा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल तथा वरिष्ठ उप आयुक्त और उप आयुक्त हैदराबाद पहुंचे। आयोग आज दोपहर बाद राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगा और 6 राष्ट्रीय दलों और 4 क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में भाग लेगा। आयोग आज 22 प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों से भी मुलाकात करेगा। डोमिनिकन रिपब्लिक की उपराष्ट्रपति महामहिम रेकेल पेना रॉड्रिग्स ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। सुश्री रॉड्रिग्स की पहली भारत यात्रा का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ये यात्रा ऐसे समय में हुई है जब भारत और डोमिनिकन रिपब्लिक अपने कूटनीतिक संबंधों की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि दोनों देशों के प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं जो लोकतंत्र के साझा मूल्यों और वैश्विक मुद्दों पर समान विचारधारा पर आधारित हैं। दोनों नेताओं ने भारत और डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत करने के लिए आदान प्रदान जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने दक्षिणी दिल्ली में जैतपुर से संदिग्ध आईएसआईएस आतंकवादी शाहनवाज को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण एनआईए को इसकी तलाश थी और इस पर 3,00,000 रूपये का इनाम रखा था। शाहनवाज के अलावा 2 और अन्य वांछित आतंकवादियों को भी गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त एचएस ढालीवाल ने बताया कि शाहनवाज के ठिकाने से पाकिस्तान स्थित संचालकों की ओर से भेजे गए बम बनाने के सामान तथा अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। बिहार में लगातार बारिश से कैमूर जिले के कई हिस्सों में अचानक बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। लगातार बारिश के कारण कर्मनाशा, दुर्गावती और सुवारा जैसी मौसमी नदियां पूरे उफान पर हैं। सुवारा नदी का जल स्तर बढ़ने से भभुआ शहर में कई इमारतें, अस्पताल और कार्यालय जलमग्न हो गए हैं। डीएवी स्कूल और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय परिसर में बाढ़ का पानी घुसने के बाद आपातकालीन स्थिति में स्कूली बच्चों को बचाया गया। कैमूर के जिला मजिस्ट्रेट सावन कुमार ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से गर्भवती महिलाओं सहित कई मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि किसी भी स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग ने आज रोहतास, कैमूर, गया, औरंगाबाद और आसपास के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पंजाब सरकार ने 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कचरा मुक्त भारत विषय के साथ राज्यव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह अभियान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी के प्रमुख कार्यक्रमों के तहत जल शक्ति मंत्रालय और भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एक संयुक्त पहल थी।
राज्य भर से कुल 24 ग्राम पंचायतों को उत्तम ग्राम पुरस्कार, 23 स्कूलों को उत्तम विद्यालय पुरस्कार और 23 सफाई सेवकों को उत्तम सफाई सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी सम्मान मिला है। इन पंचायतों, स्कूलों और सफाई सेवकों ने स्वच्छता, तरल और ठोस कचरे के उचित प्रबंधन को लेकर उत्कृष्ट कार्य किया है। इन सभी ने अपने आसपास के वातावरण को सुंदर बनाने, स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और अपने क्षेत्रों में नागरिकों को बुनियादी स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने में भी योगदान दिया है। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं खेल डेस्क से निखिल कुमार।
चीन के हांगचो में हो रहे एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है और खेलों के 10वें दिन आज 2 पदक प्राप्त हुए। भारत को पहला पदक नौकायन में मिला है। अर्जुन सिंह और सुनील सिंह ने पुरुषों के कैनोइंग डबल 1000 फाइनल में तीसरे स्थान पर रहते हुए कांस्य पदक जीता। मुक्केबाजी में प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। सेमीफाइनल में उन्हें चीन की युआन चेंग से हार का सामना करना पड़ा। प्रीति पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल करने में भी सफल रही हैं। लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पहुंचकर ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। उन्होंने सेमीफाइनल में थाईलैंड की बेसन मानिकोन को पराजित किया। क्रिकेट में भारत ने नेपाल को 23 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने नेपाल को 203 रन का लक्ष्य दिया था और यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज्यादा 100 रन बनाए। जवाब में नेपाल की टीम निर्धारित 20 ओवर में 179 रन ही बना सकी। महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल के लिए जगह पक्की कर ली है। भारत ने अंतिम 8 के मुकाबले में हांगकांग को 13-0 से हराया।
फर्स्ट हाफ में हमारा उतना अच्छा गोल निकलने के बाद थोड़े सा ऐसा हो गया कि जो हमारी स्ट्रेंथ है वो हम नहीं कर पाए, बट सेकंड हाफ में यही था कि गिवन को हमारी स्ट्रेंथ है उस पर काम करते हैं, क्योंकि समटाइम्स थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब टीम पूरा डिफेंसिव हो जाती है तो गोल निकालना, बट अभी हमारे लिए सेमीफाइनल इम्पोर्टेंट है।
तीरंदाजी में अभिषेक वर्मा ने पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत इवेंट के फाइनल में और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने महिला कंपाउंड व्यक्तिगत इवेंट के फाइनल में प्रवेश कर पदक पक्का कर लिया है। बैडमिंटन में HS प्रणॉय और PV सिंधु सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं।
आई एम हैप्पी विद द फर्स्ट विन एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द सेकंड राउंड नाउ द प्री क्वार्टर फाइनल्स। I hope I do well.
एशियाई खेल खबरों में फिलहाल इतना ही।
पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 24 रजत और 25 कांस्य पदकों के साथ कुल 62 पदक लेकर चौथे स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में अपना शानदार प्रदर्शन करने के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देश यूक्रेन के साथ एकजुट खड़े हैं और वहां रूस की सैन्य कार्रवाई की कड़ी निंदा कर रहे हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ के शीर्ष राजनयिकों की यूक्रेन की राजधानी कीव में बैठक हुई, जिसमें यूक्रेन को सहायता देने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। उत्तरी अमरीका में 14 अक्टूबर को मैरीलैंड के बाहर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की सबसे विशाल प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। इसके आयोजक अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र AIC ने जानकारी दी कि 19 फुट ऊंची इस प्रतिमा का नाम समानता की प्रतिमा रखा गया है। इसे जाने माने कलाकार और शिल्पकार राम सुतार ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र की भाजपा सरकार का देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान। छत्तीसगढ़ में 27,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6.3% पर बरकरार रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में प्रधानमंत्री ऋण योजनाओं के तहत ऋण वितरित किए। बिहार के कैमूर जिले के कई हिस्सों में लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति। और हांगचौ एशियाई खेलों में भारत ने कैनो स्प्रिंट और मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। महिला मुक्केबाजी में लवलीना फाइनल में पहुंची। कुल पदकों की संख्या 62 हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।